भजन रहस्य द्वितीय याम भजन द्वितीय याम भजन अनर्थ निवृत्ति भजन करने पर भी यदि अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करते हैं तो वो भजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए सिद्ध साधक को अनर्थों को निवृत्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा भजन होना चाहिए कि उसको अनर्थ करने के लिए सुयोग न मिले। हरिनाम चिंतन में कीर्तन में भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में वैष्णव सेवा में गुरु सेवा में ऐसे चित्त को लगाना होगा जिससे उसको सुयोग न मिल सके। शिलभक्ति विनोद ठाकुर चरिंदर ओ विश टू ट्राई टू इंगेज अवर माइंड एंड ऑल सेंसेस सच अ वे दैट वी शुड हैव नो टाइम टू डू एनी अनर्थ ऑलवेज बी केयरफुल। कल चौथा शायद या पांचों चौथा श्लोक हमने उपदेशामृत का कहा था। आज इसके बाद में कृष्ण एक जस्टवासी भजन विज्ञमन निंदा सुन्न हृदय प्रति संगल। कोई आदमी असत्संग हो छोड़कर असत्संग असत लक्षण ही और हरिनाम करता है यदि दीक्षा भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसका मन ही मन में आदर हो। असत लक्षण ही असत लक्षण ही मैंने मायाबाजी इत्यादि न हो, विशेष स्तर से स्त्री संग न हो, ऐसा यदि है और हरिनाम करता है तो उसको या करती है कोई तो उसको मन ही मन में आदर किया जा सकता है। वी हैव नॉट कॉल्ड यू ऑल फॉर ए मैरिज पार्टी, हम लोगों ने मैरिज पार्टी नहीं यहां पर बुलाई है। वी हैव कॉल्ड द डिवोटीज हु वांट टू डू भजन, यू शुड ऑलवेज नो दिस। आई हैव नॉट कॉल्ड to whom those who are lusty and they want to be married and think that this is marriage party or ceremony, we have come to choose our Krishna Dasi or Krishna Dasi, or this is not marriage. Oh, those who think like this, they are in what?
Illusion.
At once they should go away from here. We don't want to see their faces. We don't want to see their faces. We have called them. How we can help them to proceed in bhajan? So asata lakhani. But not like this. And if anyone bhajan, doing bhajan, even not initiated by any guru. No, we should try to. Bhakti Vinod Thakur is telling that, oh, by mind we should respect. And those Sadguru Pradashekar, Sambandha Jnan Krishasthi, Anartha Chhodne Ki Cheshta Wale Hain, Satmuch Mein, उनका मन के आदर के साथ साथ में दंडोत प्रणति भी करो। और जो लोग संपूर्ण रूप से अनर्थों को छोड़कर वैष्णव के अनुगत्य में नैरंतर्यमयी अष्टकाली लीला का भी चिंतन कर रहे हैं, निंदादि सुन निस्सते संग लब्बा, निंदा इत्यादि सब प्रकार से छोड़ चुके हैं, किसी की निंदा पर चर्चा में नहीं है। ऐसे वैष्णवों का संग और कृष्ण भक्ति रस भाविता मती प्रियताम कुतो की यदि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यकम कोटि जन्म सुकृति न लब। ऐसे को अपना हृदय का संपूर्ण धन मानकर उनकी संपूर्ण रूप से सेवा करो, उनके आनुगत्य में रहो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक अरण्य? द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक न प्रकृति तत्वमिह भक्त जनस्य पश्य गंगाम्भसाम खलु बुद्बुदफेन पंकज ब्रह्मद्रवत्वम अवगच्छति नीलधर्मैः। विषयी स्वभाव जनितैः बपुषश्च दोषैः। कोई यदि शुद्ध भक्त है तो उनका प्राकृत कोई बीमारी जनित अंग का कुछ विकृति है या स्वभाव कुछ रूखा है तो उसको प्राकृत मत समझो, प्राकृत मत समझो। भक्त जनस्य पश्य गंगाम भसाम खलु बुद्ध बुद्ध पे। यदि कोई वैष्णव सचमुच में वैष्णव मध्यकारी में भी आ गया है और भजन परायण है तो स्वभाव से यदि कभी कर्कश भी है तो उसको मीठा ही समझो, अपना कल्याणकारी समझो, उसमें दोष मत देखो। उसके साथ में रहने से हमारा भजन हो सकता है उनके आगे। यदि वो काले हैं, दांत निकला हुआ है, सौंदर्य नहीं है तभी उनको मान। कटु बात भी बोलते हैं तो कोई भी बात नहीं। ऐसे वैष्णव लोग होते हैं, कुछ दुर्वासा जी का ढंग ऐसा ही है, खंजक कृष्णदास इत्यादि ऐसा लिखा है भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास में, गुरु को उच्च वर्ण का ग्रहण करो और सुंदर सुकांत नवजीवक गुरु हो, सत्सदी हो, सब गुणों से युक्त हो और सुंदर सुकांत भी हो, उच्च कुल के हो। और यदि नहीं मिलता है तो जहां भी शुद्ध भक्त मिलता है, शिवादी प्रतिभा नाची शूद्र फैनो नये जय कृष्ण तत्वता, वही तत्व गुरु यथार्थ यही विचार है। तो इस प्रकार से रह करके यदि भजन करोगे तब तो तुम्हारा भजन होगा। गंगा नदी में कीचड़ होता है और फेन भी होता है, फेन ये शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही अपवित्र है, तभी गंगा में फेन और पंख होने से भी वो ब्रह्मग्रस्त ही है, उसको ब्रह्म ही समझो, उसमें दूसरे बुद्धि गंगा जल में मत करो। तुलसी का पत्ता है, टेढ़ा है, कुछ कीड़ों ने काट लिया है, तभी वो तुलसी का ही पत्ता है, उसको भगवत स्वरूप ही समझो, दूसरा मत समझो। इसलिए उनका आदर करना चाहिए। यदि उनका स्वरूप कुछ स्वरूप मैंने स्वभाव कुछ रुखड़ा है तो भी इनको वैष्णव ही माने, उनकी कभी भी निंदा इत्यादि मत करो। यदि हरि भजन में मन नहीं लगता है, हरिनाम करने में रुचि नहीं होती, हरि कथा सुनने में रुचि नहीं होती, तब वही करो। जैसे हमारे सामने बहुत से लोग बैठ रहे हैं और उनको नींद आ रही है, तो वो ये हमारे शब्द कान में उनके कान में नहीं जा रहे, मैं समझ रहा हूं, तो अभी बैठे हैं, बहुत अच्छा है, बैठे रहो, सुनो, कभी कभी आंख खोलो, कभी कभी ऐसा करो, कभी हिलो डुलो, कभी बजाओ ताली, किंतु भागो मत वहां से। इसलिए हरिनाम में रुचि नहीं लग रही है, तभी ये भावों का यही औषधि है और यही पथ है हरिनाम ही। और गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं उसको खुशी पूर्वक करते हैं, कुछ दिनों के बाद में रोग भी दूर हो जाएगा और हरिनाम में रुचि लगने लग जाएगी, हरि कथा में रुचि लगने लगेगी। जिस प्रकार से जिसको कमला रोग हुआ है, पीलिया रोग हुई है, हुआ है, तो उसके लिए पहले और कुछ का निर्णाम नहीं था, मिश्री चूसो, मिश्री चुस्ते चुस्ते चुस्ते, पहले तो ये कटु लगेगी और अंत में जब जितना ही ठीक होता जाएगा, कौड़ुआपन दूर होता जाएगा और उसे मिश्री लगने, जिस समय पूर्ण रूप से मिश्री लग जाएगी, समझो तुम्हारा रूप देखो। सरल सहज तरीके से पूर्व सब समय में औषधि इत्यादि का, आजकल का जैसा रसायन औषधि नहीं थी जिसका रिएक्शन होता है, इसलिए हमारे आयुर्वेदों में वो रिएक्शन करने वाली दवाएं नहीं थी, ऐसी ही चीजें होती थी। इसलिए यदि मन नहीं लगता है हरि कथा सुनने में या हरि नाम करने में, तो भी जो उत्तर से मन सुन रहा बैठेंगे और करेंगे, जब तक कि हमारा 16 नाम में बात नहीं हो जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे, इस तरह से प्रतिज्ञा करके इसमें लगो और कोई दूसरा नहीं। और अंत में यही कहा, तन नाम रूप चरितादि सुकृष्ण नाम क्रमेण रसनाम नियोज्य तिष्ठन ब्रजे सदा निरागी जनानुगामी कालम नए दखिलामी। सदानुरागी वैष्णव के अनुगत्य में, सदा वृंदावन में बैठ करके, वृंदावन में ही, वृंदावन पहले तो ऐसा करोगे जब नहीं होता है तो मन ही मन में करो, किंतु एक दिन बैठना पड़ेगा वृंदावन में ही सब कुछ छोड़ करके। स्वरूपत कार्यत वृंदावन में बैठ करके सदानुरागी जनानुगामी सदानुरागी राधा कृष्ण के अनुरागी जो जन है महाप्रभु के जो अनुरागी जन है उनके अनुगत्य में एकदम देख रहे थे वृंदावन में बैठकर भजन करना हो कैसे क्रमेण रसना मनसी नियोज्य जीवा से नाम को और भगवान की लीला कथाओं का चिंतन मन से क्रमशः करते हुए इस प्रकार से रहो और भजन करो ये समस्त उपदेशों का सार है। एक विशेष चीज है अनर्थों में कल या परसों हम लोगों ने बतलाया था स्वरूप ब्रह्म असत कृष्णा हृदय दुर्बल और अपरा भाई अपराध जम है भजन के लिए जहां अपराध हुआ तहां तो भजन एकदम नष्ट हो जाए और सब चीजों को मना ले सकते हैं किंतु अपराध बड़ा भारी भजन नाम अपराध भयंकर है सेवा अपराध के भी निष्कृति हो सकती है नाम के द्वारा कोई सेवा अपराध किया हरिनाम निरंतर करे और जिसके चरणों में अपराध हुआ है उसे क्षमा मांग करके अनुताप के साथ में तो हो सकता है यदि वो वैष्णव नहीं है जिसके चरणों में अपराध किया है यदि गत हो गए हैं अनुताप के साथ में निरंतर हरिनाम करो सबको अपराध दूर हो अन्यथा जो अपराध नहीं है बड़ा भयंकर है इसमें सबसे पहला भयंकर है कौन सताम निंदा भूल करके भी किसी साधु की संत की जो नाम आश्रय करके चल रहा है गुरु सेवा किया है कर रहा है ऐसे संत का वैष्णव का कभी भी निंदा मत करो डोंट क्रिटिसाइज एनी वैष्णव हु हैज सेकंड सेल्टर ऑफ नाम एंड ही इज गोइंग नाउ इन द गाइडेंस ऑफ ए गुरु वैष्णव डोंट डू इवन इन ड्रीम किसी तरह से भी मत करो यदि करेगा तो वैष्णव अपराध रूपी हाथी भक्ति लता से लता को मूल से उखाड़ करके फेंक देगी फिर किसी जन्म जन्मांतर में भी नहीं होगा इस चीज को समझो इसलिए हस्ती में दिलगी में भी मत करो वैष्णवों की निंदा सतांग निंदा गुरु अवज्ञ दूसरा है यही गुरु अवज्ञ गुरु की निंदा कहा नहीं कहा गुरु की निंदा नहीं कहा क्या कहा अवज्ञ क्यों कहा इसका कारण है आदमी गुरु की सहजी निंदा नहीं करता किंतु वैष्णव की निंदा करेगा गुरु जी के गुरु भाई की निंदा कर देगा खूब अपने गुरु भाइयों की निंदा करेगा और दूसरे लोगों को भी निंदा करेगा चबेना जैसा वो मानता नहीं है विशेष करके मठवासियों के लिए भाई बड़ा बहुत मठ साधुओं के साथ में रहते 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 उनकी निंदा या उनकी चुगली या वैसे साधारण चीज समझ लेते हैं करेक्टर पर ध्यान नहीं देते साधुता के ऊपर में ये नहीं देते किसी की चीज ले लेना उनके बाएं हाथ का खेल है ले लेने ये समझ करो भाई सदाचार वैष्णव सदाचार चीज करके चलो और भूल करके भी वैष्णव की निंदा किसी भी प्रकार से मत करो दिलगी में भी मत करो और गुरु जी की निंदा आदमी नहीं करता है किंतु अवज्ञा करता है अवज्ञा में बड़ी मुश्किल है वो साधुओं की निंदा और गुरु जी की अवज्ञा भी और बल्कि और अधिक अपराध होता है क्यों भजन की रीढ़ है क्या गुरु की निष्ठा यदि भजन में गुरु की निष्ठा के प्रति निष्ठा है तो कहीं इधर उधर से बेरास्ते से भी रास्ते पर आ जाएगा किंतु गुरु जी के प्रति जहां अवज्ञा आरंभ हो गई किसी भी प्रकार से खेल में भी कहीं दिलगी में भी किसी प्रकार से हो गई वो भक्ति लता उखाड़ देगी इसे खपतदार गुरु की किसी प्रकार से अवज्ञा मत करो, ऐसी कोई बात मत कहो किसी से जो कि उसके हृदय में ये आ जाए कि गुरु के प्रति ये कुछ अवज्ञा कर रहे हैं। कभी भी नहीं आने पाए किसी के भी हृदय में। यदि कोई सच्चा गुरु सेवक हुआ निष्ठा वाला तो वो सारा जीवन के लिए तुम्हारे प्रति उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, फिर वो जुड़ेगी नहीं और उखाड़ देगी लता भक्ति लोग। इसलिए कोई भी गुरु के प्रति ऐसा अवज्ञा मत, पहले देख सुन करके करो गुरु, अच्छा से देख सुन करके। और जब भी गुरु देखने सुनने के समय में पहली बार बड़ा खरा बहुत अच्छा था गुरु, किंतु पीछे से वो स्त्री संगी हो गई या गुरु निंदक हो गया, एक मिनट के अंदर में उसे छोड़ दो, एक सेकंड देरी मत करो और दूसरा शुद्ध गुरु करो। और जब गुरु है और ठीक है और क्या किसी भी हालत में जान करके अनजान में भी न हो, नहीं तो दूसरों की तुम्हारे प्रति में श्रद्धा भी नष्ट हो जाएगी, गुरु का भी कृपा से वंचित हो जाओगे और तुम्हारा तो हो गया सर्वनाश। इसलिए सतांग निंदा गुरु अवज्ञा, गुरु को अवज्ञा को साधारण मत समझो, गुरु अवज्ञा। श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र की निंदा मत करो। और क्या है तुम्हें विष्णु और हरि के नाम में अंतर मत समझो, अर्थात तो कल्याणकारी जो नाम है हरि नाम, उसमें नाम रूप का भेद इत्यादि मत करो। भगवान कैसे हैं? शिव मंगलजनक है, उनके नाम में रूप में भेद मत करो। ये भगवान कृष्ण अलग है और उनका नाम रूप अलग है, ऐसा मत करो। अथवा शंकर जी का नाम भगवान के नाम से स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र ईश्वर है, ऐसा भी मत करो। सब उनके आधिकारिक देवता हैं, विशेष करके प्रीति के लिए शंकर जी भगवान से अभिन्न माने जाते हैं। किंतु ऐसा मत समझो जो वो भी भगवान ही है कृष्ण ही है, दोनों में अंतर नहीं है, ये भी अपराध है। तथार्थ बाबो हरिनाम कल्पनम, भगवान का नाम इतना नहीं है, इतना प्रभाव उसका नहीं है, महत्व नहीं है जितना कि शास्त्रों में कहा गया है। भगवान का नाम करने से तत्क्षण उसका सब प्रकार का मंगल हो जाता है, कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, जैसे भागवत के द्वितीय श्लोक में लिखा गया तत्खना। तो तत्खना तो हुआ नहीं, हम तो कर रहे हैं कितने दिन से। अरे मूर्खों, दस बाईस बीस हजार जन्म में हो जाए तो तत्खना समझो, क्रिया आरंभ हो जाएगी, इसे होगा ही जरूर। इसलिए ऐसा समझो मत ये नहीं होगा, इसलिए शास्त्र में बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। नहीं, हम तो समझते हैं कि इतना कम लिखा गया है और भी लिखना चाहिए, किंतु कोई शब्द नहीं है जिसको लिखा जा सके। भगवान नाम जो महात्मा लिखा गया सब ठीक लिखा गया, इसलिए कल्पना मत समझो जो ये कल्पना है। भगवान का रूप ही नहीं है तो उनका नाम भी कल्पित है, ये भी गलत है। भगवान का रूप है, तुम्हारा भी रूप है, भगवान की तो बात क्या, तुम्हारा भी अपना सच्चिदानंद घन रूप है। और भगवान का नाम कल्पना तदर्थ बागो हरिनाम की कल्पना से बतलाएं, कल्पना है ये सब। नाम बोले पाप बुद्धि, नाम करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा, इसलिए फिर पाप करेंगे फिर पूरा पुनः फिर से पाप करेंगे और फिर वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा करने से पाप और जकड़ जाएगा, नहीं होगा। इसलिए पाप मत करो, जगाई बोले मधाई बोले आर नरे बाप, और पाप नहीं और मत करो, कोई अपराध नहीं। आलस्य प्रमाद मत करो भगवान का नाम के समय में, अपराध आलस्य और प्रमाद न हो। आलस्य प्रमाद मैंने क्या, हरिनाम कर रहे हैं और पैर ऊपर उठा दिया, या जैसा नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आलस्य इत्यादि को दूर रख सकते बड़े प्रेम के साथ हो। यदि तुम्हारा कोई मित्र आ जाता है तो सोए रहेगा, उठ करके बैठ जाएगा, तो भगवान का नाम कर रहा है और सो करके और ऐसे करेंगे। यदि सचमुच में कोई योगी है तो सुनते खाई से जथा तथा नाम, ये तो ठीक है, किंतु प्रेम प्राप्ति के लिए ऐसे करने से नहीं होगा। ब्रज का प्रेम ऐसे ही हो जाएगा, उतना लक्ष्य छोड़ करके और प्रेम पूर्वक शुद्ध रूप में उसे करें। और क्या बचा है? नाम करते समय अनवधान, इधर धन मन करना मत करो, ये भी अपराध है। और अश्रद्धालु जिसको श्रद्धा ही नहीं है, उस संपत्ति को हड़पने के लिए या किसी कारण विशेष से हरिनाम दूसरे को शिष्य को दिया, तो इसमें भी नाम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सब मत करो। ये 10 प्रकार के नम अपराध है, भयंकर हैं, और विशेष करके ये 10 नाम जो अपराध हैं, ऐसे तो ऐसे हैं किंतु धाम में रहकर और गुरु वैष्णव के निकट रहकर यदि किए जाए तो क्या होता है? वज्रलेप हो जाता, वो एकदम नहीं होता, किसी जन्म में उसका कल्याण नहीं। गुरु बड़े दयालु होते हैं, वैष्णव मात्र ही यदि उन्नत हैं तो वो सभी गुरु ही आए, बड़े दयालु होते हैं, अपराध को भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्षमा करते जाते हैं, अपराध लेते ही नहीं उनको, तो भी उनकी चरण की धूलि जो है वो नहीं क्षमा करती। बड़ी भारी मुश्किल है। महाप्रभु जमन से मन भीषण तारगौन, महाप्रभु तो क्षमा कर देंगे, उनके जो स्वर्ग दामोदर राय रामानंद और जो है उनकी चरण की धूलि क्षमा नहीं करेगी, बहुत कठिन है। इसलिए वैष्णव अपराधों से, इन अनर्थों से बच करके हरि नाम करो, तब तो कुछ फल होगा। यहां तक कि भीतर में नाना प्रकार के अनर्थ, विशेष करके काम इत्यादि को ग्रहण लेकर के और हरि नाम करते हैं तो भी नहीं होगा। इसलिए भाइयों सावधान होकर के यदि नाम का फल चाहते हो शीघ्र, तो जैसे भक्त विनोद ठाकुर ने भजन रस में कहा है, आप उसको पालन करते हुए हरि नाम करें। ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर, कोई चिंता मत करो पालन की, हम जहां जाएंगे वहां हो जाए। रामचंद्र के लिए आप लोगों ने अपना लगेज ऊपर बस में दिया कि नहीं? सब लोग दे आए। इफ यू आर नॉट गिवन योर लगेज ऑन बसेस, प्लीज दैट वन यू शुड गो एंड गिव योर लगेज ऑन बसेस, डोंट डिले। बोलो।
In this verse, we should understand that if there is an advanced devotee, but physically he has some deformation, he may have black complexion, or he has some crippled organ, then we should not think anything bad for him. Or it may be possible the kind nature, he may be harsh, but we should understand that he is an advanced devotee, so His heart words are also very detailed for us. There are many devotees, like Durvasa, like Hari Krishna, etc. It is very clear that there is common or some mud or dirt in Ganges, but we should not consider Ganges as ordinary water. We should have Brahmapurti for it, that is, it is a transcendental water. If we can, but we don't have faith in it, but we should keep on saying it forcefully. Buddha is saying that it may be possible hearing Hari Katha because we don't have faith, we may feel like the sleep. Sometimes eyes close now, and sometimes forcefully one may open. Buddha is saying this in some of the devotees like this. But it is forcefully one should keep on doing it, because it is said in the scripture that if we listen to Hari Katha, if we chant in a sleepy mood but with love, positively, a day will come that we will get faith for it, and then we will chant and listen to Hari Katha with faith, and this problem of sleep will go away. It's something like in earlier days, whenever one was diseased and having this jointed disease, the medicine was given, that is transmittery. You know, it is the best treat you can be. And this mystery cures jointed disease. But when a person gets this disease and if he eats this mystery, he feels it bitter. He does not have 3 days for it. But suggestion is, advice is that he should continuously take this sugar candy. If you keep on taking this sugar candy, his disease will go away gradually, gradually. And then he will start cultivating it 3 days. And that day he has full 3 days for this sugar candy. This means that disease has gone. Similarly, we may not like to chant to hear, but if we continuously keep on doing and adopting this process, a day will come and we will have faith for it. That means now we have progress. The next law, which is the essence of all the scriptures, it says that we should get Haina living in bread. If physically not possible, then we should keep our mind in bread. Bread is a mood, Vrindavan is a mood. Keeping our mind in that mood, we should chant. And you remember one thing, that finally our abode is this Vrindavan. And this is a place where we have to live. This is the ultimate goal of our life. And the process is that we should follow those persons who are Sanamurali, who are absorbed in Hari Bhajan continuously, and we should, in their guidance, do our bhajan. How should we do our bhajan? There are two things if we get involved in bhajan. One, our jiva, that is tongue, another is our mind. Our tongue should keep on continuously reciting the name of Krishna, and by mind we should keep on thinking the different pastimes of Krishna. This is the process. One thing is very important here, we should understand that in this all unconscious desire, which is our mother, the most heavy and dangerous is aparad. We should always, Gurudev, aparad is yam. Yam is the record of death. It will lead to our spiritual death. Any other unwanted desire, any other anas, we can somehow or other remove by chanting. But this Nama Purasa, especially, it is very dangerous. And in this Nama Purasa, Vaishnava Purasa is the topmost. We should try to be very careful in this regard. Because if we have committed any Vaishnava Aparad, the only way of to come out from this Aparad is that we should go and ask for forgiveness from that Vaishnava. And if suppose someone at that Vaishnava does not live, he leaves this place or he has gone together, then he becomes totally helpless. In that case, we will have to check his repentance very carefully. Only then we can get rid of this offense. And therefore we should think, we should be so much careful that even in our dream we should not commit this offense. This offense is like entering of an elephant in the field. He uproots the people of our bhakti. If bhakti people is stuck somewhere or other, it can be rejuvenated, but it is uprooted. There is no question of bhakti coming again, and the life together will go behind. And the another aparad offense, which is again more dangerous, is guru abhaktiya. It is not that you should not do ninda of guru. In this regard, it is that guru abhaktiya. Guru abhaktiya means disobeying your guru. Even disobeying your guru is very is an aparad.
Avagya? What is the meaning of avagya? Not only that, very vyapak. Anyhow, you should not
neglect.
In mind event, not only that he is giving order and you are not following. Not only this.
Oh, so much.
Anyhow, you should not neglect. In any way, in any case, even in mind, otherwise bhakti kripa will be uprooted.
In this case, your guru, Rajab, you are saying that it happens, so the person who is having a guru, he may be obeying his order, but what happens that he may criticize his Godmother or his Gurudev's Godmother or his own Godmother. This is also Guru Abhagya. This is also disobeying Guru. Because if someone, your guru is not pleased by any of your activities, this will be disobeying your guru. So you should not talk to anyone of your godmother or any person in a way that his faith may get reduced for his guru way. Therefore, these are very important points. As regards guru Shraddha is of concern, because it is said that in our advancement of bhakti, Guru Nitya is the backbone. And if we are weakening our this backbone, bhakti cannot stand. Those who are living in work, it is very dangerous for them. Because for them, to commit these offenses is like eating chana. And it is very common in them. Therefore, we should be very much careful. Even in job or in life mood also, we should not commit such type of offense. That day, if we will reduce our faith in our Gurudev, our bhakti will go. It is required that when first we accept our Gurudev, We should carefully watch and see to whom we are accepting our guru. Once we have accepted it, then we should totally surrender at his lotus feet. If we find later on that guru to whom we accepted has become his fallen, that is, he is criticizing his own guru or Vaishnava, or he is associating with women, we should give up him quickly and should accept some other guru. But once we have accepted our Gurudev and he is advanced and is not fallen, then there is no point of disobeying him in any respect. Another offense is that his Hari name is beneficial, Shiv, it is auspicious, and we should not consider that the name and the person of the name, Nam and Nami, they are not different. Or also we should not think that Krishna or demigod. They are having an independent existence. Their name and their existence is not independent. Of course, the name of Shankar, because he has got very fascinating and attachment for Krishna, is considered to be on very highest platform, but still it is not independent of Krishna's name. And another offense is that this name has been described in our scriptures somewhat too much, because the effect of name is not too much. We see we are saying this so many days and months or years, but there is no any effect. While the scripture says, if we chant the name of Hari, we will get that immediate effect. Gurudev says that even if thousands of years is taken, we should consider it immediate. And the fact is this, that the scriptures, though they have spoken whatever about the Harinam, it is not itself complete, because Harinam is so much potent and powerful that its glory is so much exhaustive that even its scriptures cannot describe it. It goes beyond the scriptures in the scriptures. While chanting the Harinam, we should be careful. We should not have alas and pramad, that we should not show any laziness or why 9 months back. We should not chant layerly, we should chant very carefully. Though it is said in the scriptures that we can chant Harinam in any way, even while lying, while sleeping, while eating, but when we chant the Harinam to cultivate flame of Krishna at that time, we should be very careful. Gurudev is saying that, of course, when the waste is not there, it may be difficult for us to chant, but we should take a vow that we will sit at a place in living direct and chant with carefully for at least 15 rounds together. We may feel even sleepy, we may have some sense of drowsiness, no fear, no harm. But forcefully we should keep on doing it. A day will come when the result will be there. And one thing more, all these offenses become very, very much burdensome. I can't say the word is real English. And furthermore, when we commit this offense in dham, because dham it is very sensitive. When we cultivate any Krishna conscious activity, we get a lot of help and multifarious effect. But when we commit offense, then this will totally reduce our bhakti. So, all the Vaishnavas are advanced, all advanced devotees are Vaishnavas, and they are like our Guru. So, we should respect them like our Guru and giving our all heart and mind, we should respect them, because Vaishnava and Guru are very genuine and genuine people. If we commit any offense, they may not mind it. They will not accept our offense also. They always forgive us, but their death of their lotus feet, it does not accept, they will not accept us. Like Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. He may forgive us, but other associates of Mahaprabhu like Guru Damodar, etc., they may not forgive us. So we should be very careful in this regard. If we reject Guru, having unwanted desires in our heart, desires will be never there. We may have lust in our heart and do not try to remove it and can't believe it. How can we be happy with your wife and Harina?
There was a class in the 27th morning of 11th November 2001 in Barcelona.